नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ICAR के पूर्वी क्षेत्र कृषि अनुसंधान परिषद पटना की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए। ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने किसानों से जलवायु अनुकूल किस्मों को अपनाने पर जोर दिया। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु लगा चुके हैं संगम में आस्था की डुबकी। रेलवे दरभंगा, सहरसा और जयनगर समेत कई स्टेशनों से चला रहा है कुंभ स्पेशल ट्रेन। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि। दिन में हो रहा है गर्मी का एहसास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 समान किस्तों में वार्षिक 6,000 रूपये दिए जाते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि देश भर के 2,50,00,000 किसान इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत और ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे। इधर भागलपुर में सभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। NDA के कई बड़े नेता तैयारियों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता और भागलपुर के पूर्व सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन, प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी समेत पार्टी के कई बड़े नेता जनसंपर्क कर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दरभंगा आ रहे हैं। कृषि मंत्री मखाना अनुसंधान केंद्र में कृषकों, अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों के साथ बैठक करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने लगभग 80 फसलों के 2000 से अधिक जलवायु अनुकूल किस्मों को विकसित किया है। इसे किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है। डॉक्टर पाठक आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी क्षेत्र कृषि अनुसंधान परिसर पटना के 25वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों, अटारी और अन्य संस्थानों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार जरूरी है। डॉक्टर पाठक ने कहा कि किसानों को बायो फोर्टिफाइड फसलों की खेती की भी जानकारी दिए जाने की जरूरत है।
हमने बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज का भी डेवलप कर रहे हैं और रिलीज भी कर चुके हैं और आज के दिन हमारे पास 175 बायो फोर्टिफाइड वेराइटी। तो मैं तो चाहूंगा कि इसका भी प्रचार प्रसार आप लोग तो करें और किसानों को जल्द से जल्द इस वेराइटीज के बारे में जानकारी दें।
महानिदेशक ने कहा कि प्रगति और प्रकृति दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है ताकि प्रकृति को नुकसान नहीं हो। इसके लिए प्राकृतिक खेती सबसे अच्छा तरीका है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक चयन बोर्ड के प्रमुख डॉक्टर संजय कुमार ने इस अवसर पर कहा कि किसानों तक तकनीकी जानकारियों का प्रसार प्राथमिकता के साथ करने की जरूरत है।
25 साल के दौरान जिस तरीके से इस संस्थान ने काम किया और सबसे बड़ी बात है कि किसानों ने जिस तरीके से इस संस्थान के साथ जुड़ के काम किया, वो किसानों का भी योगदान बहुत बड़ा है संस्थान के साथ। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी विन विन सिचुएशन थी जिसमें किसान और विज्ञान दोनों ने साथ साथ मिलकर हिंदुस्तान को ईस्टर्न रीजन को एक नई ऊंचाई पर लेकर गए हैं और आने वाले समय में इसी तरीके से लेकर जाते रहेंगे, ये हम सबकी शुभकामनाएं भी हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान के पूर्वी क्षेत्र कृषि अनुसंधान परिसर ICAR RCER पटना के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने कहा कि संस्थान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और समेकित खेती के लिए कई मॉडल विकसित किए हैं।
काफी सारा टेक्नोलॉजी उन्नत तकनीक है लेकिन सब एक साथ मिलके चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे हमारा ICAR संस्थान हो राज्य सरकार का संस्थान हो, जैसे हमने बताया कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ बिहार का साथ मिलके हम लोग कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है 10 गांव में 3000 किसान का साथ जो है काम कर रहे और ऐसा ही हम लोग और भी दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र का साथ मिलके कार्य कर रहे।
संस्थान के रजत जयंती समारोह के अंतिम दिन ICAR RCER पटना के 25 वर्षों की उपलब्धियों पर एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। इसके अलावा इस अवसर पर कई प्रगतिशील किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का शताब्दी समारोह 24 और 25 फरवरी को आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी के समारोह में शामिल होंगी। इससे पहले कल जेपी गंगा पथ पर प्रतीकात्मक शताब्दी दौड़ का आयोजन किया जाएगा। शताब्दी दौड़ में बड़ी संख्या में PMCH के पूर्ववर्ती छात्र भाग लेंगे। शताब्दी समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ए हई ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शताब्दी समारोह ऐतिहासिक और भव्य होगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज शतवार्षिकी समारोह में मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 43 छात्र छात्राओं को विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना।
आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_patna से प्राप्त की जा सकती हैं।
अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आज 41वां दिन है और श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समन्वय बनाकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था में पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं बिहार समेत सीमावर्ती राज्यों में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे प्रशासन कई महाकुंभ विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। रेलवे ने बढ़ती भीड़ के प्रबंधन के लिए विभिन्न स्टेशनों पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधा युक्त होल्डिंग एरिया बनाए हैं। समस्तीपुर रेलमंडल के तहत महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए आज 4 कुंभ विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सहरसा स्टेशन से शाम 4 बजे कुंभ स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, वहीं एक अन्य स्पेशल ट्रेन जयनगर से शाम 4:30 बजे खुली। इससे पहले रक्सौल से एक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। DRM विनय श्रीवास्तव ने बताया कि आज रात 9 बजे दरभंगा स्टेशन से स्पेशल ट्रेन खुलेगी।
आज हम लोगों ने 4 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। कुल मिला के अभी तक कुंभ के लिए हम लोग जो है 10 तारीख के बाद से 24 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर चुके हैं और कोशिश है कि 26 तारीख को अंतिम स्नान है तो तब तक हम जितने भी श्रद्धालुओं की सहसे स्पेशल ट्रेन चला के हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे। आज स्पेशल ट्रेन जो कुंभ के लिए चली हैं वो चली हैं रक्सौल से, जयनगर से, सहरसा से और दरभंगा से अभी थोड़ी देर में चलेगी, 1 घंटे बाद शाम को चलेगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना की गई है। नई दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के 101वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करके वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएं।
आज भारत की 60% आबादी युवाओं की है, उसमें से ज्यादातर स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो आह्वान है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है, भारत को 2047 तक विकसित भारत में परिवर्तित करना है, तब ये संभव हो पाएगा अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हम देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर पाएंगे।
केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बढ़िया बजट प्रस्तुत कर राज्य के चौमुखी विकास का मार्ग खोल दिया है। श्री सिंह शेखपुरा में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
बिहार में जो अभी सरकार है वो डबल इंजन और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग बिहार की सरकार को, बिहार की सरकार काम कर रही है, केंद्र सहयोग कर रहा है, घोषणा हुई उसमें जो उत्तर बिहार के लिए मखाना बोर्ड का गठन, पश्चिमी कोसी नहर के बांध के सुदृढ़ीकरण, पटना में आईआईटी के विस्तार की घोषणा हुई, पटना में कई ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विस्तार की घोषणा हुई, तो ये सब जो आधारभूत संरचना में विस्तार होगा तो उससे बिहार की विकास की गति और तेज।
इधर राज्य के लघु जल संसाधन मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने औरंगाबाद में कहा कि केंद्रीय बजट की घोषणाओं से मध्यम वर्ग के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। मधेपुरा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बजट संवाद के दौरान कहा कि केंद्र सरकार का बजट ऐतिहासिक है। राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके कारण दिन के समय लोगों को हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि का क्रम जारी रहेगा।
आज के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 72 घंटों के दौरान न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन वज्रपात होने की संभावना है।
होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस 2025 का उद्घाटन बिहार सरकार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि सैनी ने पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में किया। यह आयोजन कल तक चलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की ओर से आज दरभंगा में विकसित भारत दिव्य भारत विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सहरसा जिले के महिषी थाना क्षेत्र अंतर्गत राजनपुर बाजार में भीषण अगलगी की घटना में आधा दर्जन दुकानें और एक मदरसा जलकर राख हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ICAR के पूर्वी क्षेत्र कृषि अनुसंधान परिषद पटना की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए। ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने किसानों से जलवायु अनुकूल किस्मों को अपनाने पर जोर दिया। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु लगा चुके हैं संगम में आस्था की डुबकी। रेलवे दरभंगा सहरसा और जयनगर समेत कई स्टेशनों से चला रहा है कुंभ स्पेशल ट्रेन। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि। दिन में हो रहा है गर्मी का एहसास। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।